इशिका माहिर और आयशा के रिश्ते में तरार डालना चाहती थी और उसने ऐसा कर लिया था। आयशा और माहिर दोनों ही एक दूसरे को धमकी दे रहे थे ताकि उनमें से कोई भी मुंह ना खोले। आयशा और माहिर के रिश्ते के बीच दरार आते ही इशिका ने क्रिस्टल को मैसेज करके माहिर को अरेस्ट करने को कहा। वहीं माहिर से बात करने के बाद आयशा अंदर आई तो वो अभिमन्यु को समझा रही थी कि वो इशिका को राजवंश विला में ना रखें ताकि उनकी कंपनी पर बात ना आए। आयशा ने अभिमन्यु से शांत स्वर में कहा, अभी मैं बाहर गई थी तब मैंने राजवंश एम्पायर के स्टॉक्स चेक किए थे और उनमें गिरावट देखी जा रही है। अगर लोगों को पता चल गया कि आप इशिका की हेल्प कर रहे हैं तो कंपनी को और बड़ा नुकसान होगा। क्या आप ऐसी लड़की के लिए राजवंश एम्पायर को खतरे में डालेंगे मिस्टर राजवंश? अभिमन्यु ने आयशा को देखकर सिर हिलाया। हालांकि उसने कुछ कहा नहीं था पर उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली एक छोटी सी स्माइल थी। आयशा का साथ देते हुए नक्श ने कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है चाचू, राजवंश एम्पायर के हेड इस वक्त आप हैं और कंपनी के साथ कुछ भी होता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। दादू इसके लिए आपको माफ नहीं करेंगे। यहां नक्श का दादू से मतलब अभिमन्यु के डैड प्रशांत राजवंश से था। अभिमन्यु के बाद आयशा ने इशिका से कहा, मैं जानती हूं कि अब तुम अपने उस किराए के घर में नहीं जा सकती हो, पर तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। पहले ही सबको पता चल गया है कि सिंघानिया फैमिली के तुम्हारे साथ कुछ रिलेशन है। हम लोग तो पहले ही आगे आ गए हैं लेकिन राजवंश फैमिली को इन सब में मत खसीटो। इशिका प्लीज थोड़ा समझदार बनो। नक्श ने इशिका पर ताना मारते हुए कहा, तुम कितनी समझदार हो आयशा, इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो, ना कि उन लोगों की तरह जिसे राजवंश फैमिली के किसी ना किसी मर्द के साथ रिश्ता रखना होता है। नक्श सीधे सीधे इशिका के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। कोई और बोले या ना बोले लेकिन वसुधा ने तेज आवाज में सख्ती से कहा, जुबान संभाल के बात करो, ये इस घर की बहू है, इसके ऊपर कोई भी गुनाह अभी साबित नहीं हुआ है और ये पुलिस का काम है। तुम दोनों होते कौन हो इस पर इल्जाम लगाने वाले और कौन यहाँ कैसा है इसके बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। बोलते हुए उन्होंने गुस्से से आयशा की तरफ देखा। आयशा ने वसुधा को समझाते हुए कहा, ठीक है दादी, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ होगा लेकिन फिलहाल के लिए लोगों के लिए वही क्रिमिनल है। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक उसे ये सब सहना पड़ेगा। अचानक इशिका के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। इशिका के हाथ में उसका मोबाइल था। उसने आयशा की तरफ देखकर उसी अंदाज में कहा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, अभी अभी तुमने मामला साफ होने की बात कर रही थी और देखो मेरा नाम साफ हो भी गया, असली क्रिमिनल पकड़ा गया है। इशिका ने अपना मोबाइल आयशा के हाथ में दे दिया ताकि वो देख सके। अभी अभी एक लेटेस्ट पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें माहिर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो पिक्चर देखते ही आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया था। इशिका ने भी नहीं सोचा था कि क्रिस्टल इतना जल्दी एक्शन ले लेगी। एक्चुअली जब इशिका ने माहिर का नाम बताया था उसके बाद ही क्रिस्टल ने उसके अरेस्ट की पूरी तैयारी करवा ली थी। उसने जानबूझकर ये सब रिपोर्टर के सामने करवाया था कि ये न्यूज़ जल्द से जल्द बाहर निकल जाए कि माहिर ही असली कातिल है। जब पुलिस और उनके पीछे रिपोर्टर्स माहिर को अरेस्ट करने के लिए हॉस्टल में पहुंचे तब मालविका उसे भला बुरा कह रही थी। मालविका रोते हुए चिल्लाकर बोल रही थी, कैसा एहसान फरामोश बेटा है, उसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तूने उसी की कातिल के पक्ष में बयान दिया है। अरे वो लड़की मनहूस है, वो जेल में सड़ना डिजर्व करती है। एक बात याद रखना, मैं तुझे गवाही देने के लिए कभी नहीं जाने दूंगी, उस लड़की को सजा मिलकर रहेगी। माहिर को सुनाते हुए वो उसे मारने लगी। एक लड़का होने के बावजूद माहिर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मालविका से बच सके, ऊपर से वो स्टूडेंट से घिरा हुआ था। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची माहिर जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर प्लीज इस पागल औरत से मुझे बचाइए, ये मेरे डैड की बहन है और मुझे बेवजह मारे जा रही है। इंस्पेक्टर माधव ने उसकी तरफ सख्ती से देखा और कहा, आपको अपने पिता की हत्या के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उम्मीद है कि आप हमारी जाँच में हमारा सहयोग करेंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मालविका और उसके आसपास के रिपोर्टर हक्के बक्के रह गए। रिपोर्टर्स ने जल्दी से अपना कैमरा उठाया और उन्हें शूट करने लगे। रिपोर्टर्स जल्दी जल्दी उन्हें सवाल करने लगे, इंस्पेक्टर मेन सस्पेक्ट तो इशिका सिंघानिया थी, फिर आप इसे पकड़कर क्यों लेकर जा रहे हैं, आप उसे अरेस्ट कीजिए ना जो पैसों के दम पर बाहर खुली हवा में सांस ले रही है, रिपोर्टर ने अपना माइक इंस्पेक्टर की तरफ करके कहा। मालविका भी चिल्लाकर बोली, हाँ उस इशिका को अरेस्ट कीजिए, उसी ने मेरे भाई को मारा है, उसे फांसी की सजा दो, वो इसी के लायक है। रिपोर्टर्स इंस्पेक्टर को अलग अलग सवाल पूछने लगे, इससे वो फंस गया था। हालांकि उसे खुले में स्टेटमेंट देने की इजाजत नहीं थी, फिर भी अपने सीनियर से परमिशन लेने के बाद इंस्पेक्टर ने उन्हें अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा, देखिए, इशिका सिंघानिया बेगुनाह है और उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है। फिलहाल हमें इन्हीं के खिलाफ सबूत मिले हैं। उम्मीद है कि आप पुलिस के काम में रुकावट पैदा नहीं करेंगे। वहीं राजवंश विला के अंदर जब ये न्यूज आयशा ने देखी तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ये उसने कभी प्लान नहीं किया था। नक्श को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अभिमन्यु से कहा, देखा आपने, अभी भी रिपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि इस केस में हमारा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इशिका को छोड़ दिया गया है। क्या अभी भी आप ये नहीं मानेंगे कि इसकी वजह से बात हमारी फैमिली और बिजनेस पर आ रही है? क्या तुमने सोचा है कि माहिर को अरेस्ट क्यों किया गया है जबकि मिस सिंघानिया को अरेस्ट किया जाना था? अभिमन्यु ने भौहें चढ़ाकर कहा। हाँ, क्योंकि उन्हें माहिर से पूछताछ करनी होगी और उससे वो काफी सारे सबूत जुटा सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसे फिलहाल के लिए अरेस्ट किया होगा। कोई भी बेटा अपने ही बाप को क्यों मारेगी? नक्श ने बेपरवाही से जवाब दिया। आयशा की नजरें अभी भी मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। वो लाइव न्यूज देख रही थी। पुलिस ने अपना स्टेटमेंट देते हुए न्यूज में कहा, असली हत्यारा माहिर दास ही है और उसने इशिका सिंघानिया को फंसाया है। अपने पिता को मारने और सबूत को मिटाने के जुर्म में हम उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। बाकी सच पूछताछ में सामने आ ही जाएगा। माहिर के अरेस्ट हो जाने के बाद भी रिपोर्टर्स तरह तरह की बातें बनाने लगे। उन्हें यही लग रहा था कि पैसों के दम पर इस केस को दबाया जा रहा है और माहिर जैसे मासूम इंसान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों की बात सुनकर मालविका पुलिस के आगे आई और सख्ती से बोली, ये क्या बकवास चल रहा है? मेरे भाई को इशिका सिंघानिया ने मारा है। वो इसके खिलाफ साजिश कर रही है, इस मासूम से लड़के को फंसा रही है। आप उस लड़की को जाकर अरेस्ट कीजिए, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। देखिए, हमें सबूत मिले हैं तभी हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं और वो सबूत इतने ठोस और पुख्ता हैं कि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप पुलिस के काम में बीच में टांग अड़ाएंगी तो मजबूरन मुझे आपको भी अरेस्ट करना होगा, इंस्पेक्टर ने मालविका को घूरते हुए कहा, जो जानबूझकर उनके आगे जाकर खड़ी हो गई थी। मालविका माहिर को सपोर्ट कर रही थी, ये देखकर वो रोने लगा और रोते हुए बोला, देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरा यकीन कीजिए। मैंने इशिका के पक्ष में बयान देने के लिए भी हाँ कहती थी, फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसे किसी अमीर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक निर्दोष आदमी को नहीं फंसा सकती है। माहिर की बात सुनकर सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए और फिर से राजवंश फैमिली के बारे में भला बुरा कहने लगे। उनका यही कहना था कि पैसों के दम पर बेगुनाह माहिर दास को फंसाया जा रहा था।
वही रिपोर्टर्स की बात सुनकर नक्श ने अभिमन्यु से कहा, अब आप क्या कहेंगे चाचू? लोग बेवकूफ नहीं हैं, उन्हें सब समझ आता है। आपने पुलिस वालों को प्रेशराइज किया ना ताकि वो इशिका को छोड़ दे और उस मासूम लड़के को फंसा दे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इस लड़की के लिए कंपनी और इस फैमिली की इज्जत को दांव पर क्यों लग रहे हैं। लोगों की तरह नक्श को भी माहिर बेगुनाह लग रहा था। तभी न्यूज़ के अंदर पुलिस वाले ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। वो रिकॉर्डिंग आयशा और माहिर की बातचीत की थी। माहिर ने आयशा से कहा, अच्छा तुम चिंता मत करो, मैंने डैड को मार डाला है, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अगली आवाज़ आयशा की थी, क्या तुमने उनको मार डाला? लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, चिंता मत करो, मैंने सारा इल्ज़ाम इशिका के ऊपर डाल दिया है। मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे डैड और इशिका से परेशान थीं, इसलिए तुम्हारी दोनों परेशानियों को मैंने एक साथ रास्ते से हटा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आयशा, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, माहिर ने कहा। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग थी, कॉल जो थोड़ी देर पहले आयशा और माहिर के बीच में हुई थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद माहिर के कदम लड़खड़ा गए थे तो बाकी रिपोर्टर्स भी हक्के बक्के रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवंश विला में उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आयशा के कदम लड़खड़ाने लगे। उसका चेहरा डर से सफ़ेद हो गया था। आयशा घबराहट के मारे मन ही मन बड़बड़ाकर बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही रिकॉर्डिंग है, और ये पुलिस के हाथ कैसे लग सकती है? अगर पुलिस के हाथ रिकॉर्डिंग लग गई है तो वो मुझ तक भी पहुंच ही जाएंगे। माहिर से बात करने के लिए आयशा ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगी कि तभी उसने न्यूज़ में माहिर की आवाज़ सुनी। माहिर ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा प्लान आयशा सिंघानिया का था, उसने मुझे फंसा दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया था। मुझे इशिका सिंघानिया से मिलना है, प्लीज़ एक बार उससे मिलने दीजिए, उसे कहिए कि मेरी मदद करे। हालांकि वहाँ हो रहे शोरगुल में माहिर की आवाज़ दब गई थी। पुलिस की रिकॉर्डिंग प्ले करते ही वहाँ काफ़ी शोर होने लगा। पुलिस ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, बेशक ये रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर काफ़ी नहीं होगी, इसीलिए हमें माहिर दास का पुराना मोबाइल मिला है जो इसने फेंक दिया था। उसके अंदर बहुत से रिकॉर्डिंग्स हैं जो इशिका सिंघानिया के बयान से मैच कर रही है। इसने काफ़ी सोच समझकर पूरी साजिश को अंजाम दिया था। ऊपर से इशिका सिंघानिया को भी उसने फंसा दिया। सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की गई थी। सारे चार्ज इसके ऊपर लगाए जाएंगे। पूरे सबूत के हिसाब से ही पुलिस ने अरेस्ट वारंट तैयार किया है और इसे अरेस्ट करके लेकर जा रही है। अपनी बात खत्म करके पुलिस ने अरेस्ट वारंट ऊपर करके सबको दिखाया। किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट तभी जारी हो सकता था जब पूरे सबूत हो। उसके बाद रिपोर्टर्स की भीड़ इधर उधर हो गई थी और पुलिस माहिर को लेकर चली गई थी। केस में आए इस अचानक मोड़ ने सबको चौंका दिया था और यही हाल राजवंश हाउस में था। लाइव रिपोर्टिंग बंद हो गई थी। अभिमन्यु ने नक्श की तरफ सर्द निगाहों से देखा और सख्ती से कहा, मिस सिंघानिया ने किसी का मर्डर नहीं किया है, तो आगे से मैं किसी के मुंह से भी उसके लिए मर्डरर जैसा शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। नक्श चुप हो गया था क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। तभी एक हाउस हेल्पर वहां पर आया। उसने अंदर जाकर नजर झुकाकर कहा, सर बाहर कुछ पुलिस वाले आए हैं और वो मिस सिंघानिया को ले जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि जांच के लिए उनसे पूछताछ करना जरूरी है। पुलिस वाले कभी राजवंश विला में पहले नहीं आए थे और इसी के साथ नक्श को बोलने का मौका मिल गया। वो हिम्मत जुटाकर फिर से बोला, सुना आपने, राजवंश विला में आज पुलिस आई है, वो भी इसकी वजह से। ये उस केस से जुड़ी हुई है, अगर यहाँ पर रहेगी तो बार बार पुलिस यहाँ आएगी और इस तरह पुलिस का घर पर आना अच्छा नहीं माना जाता है। अभिमन्यु को नक्श की बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही हाउस हेल्पर ने हल्का खांसते हुए कहा, एक्चुअली वो मिस आयशा सिंघानिया को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। नक्श के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने आयशा की तरफ देखकर कहा, लेकिन तुम इस मामले से कैसे जुड़ी हुई हो और वो तुमसे पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? आयशा तो पहले से ही घबराई हुई थी, ऊपर से नक्श के सवाल जवाब करने पर उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। नक्श, वो मैं आयशा इतनी परेशान थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी सफाई में आखिर क्या कहें। आयशा को इस तरह घबरा कर परेशानी में देखकर ऋषिका ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ मत, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। फिलहाल तो वो सिर्फ जांच के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। अभी तुमने स्टेटमेंट में सुना नहीं क्या? रिकॉर्डिंग प्ले हुई थी, उसमें दूसरी आवाज़ आयशा की थी। वैसे आयशा, तुमने बताया क्यों नहीं कि माहिर ने मर्डर किया है? वो मर्डर करने के बाद तुम्हें कॉल क्यों कर रहा था? आयशा का गला सूखने लगा। उसने नक्श की तरफ देखा तो वो भी उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। आयशा ने जल्दी से सुबकते हुए कहा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो उसे जानती तक नहीं। उसे एक बार पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प की थी और उसके बाद में उसने मुझसे चिपकना शुरू कर दिया था। ऋषिका आयशा को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। वो आयशा की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग तुमने ही पुलिस को दी है? आखिर तुम दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास ही हो सकती है ना आयशा? आयशा उसे मना करना चाहती थी, इसलिए नामे सिर हिलाने लगी। आयशा कुछ बोलती उससे पहले ऋषिका उसके कुछ पास आई और सख्ती से बोली, तुमने वो रिकॉर्डिंग पुलिस को नहीं दी थी, इसका मतलब तुम माहिर को बचाना चाहती थी? तुम्हें क्रिमिनल को बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी आयशा? ऋषिका ने आयशा को सवालों के घेरे में इस तरह ले लिया था कि वो बुरी तरह हड़बड़ा गई थी। आयशा झूठ बोलती या सच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो फंसने वाली थी ये तय था।